हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान ने अपनी पकड़ अनाही की कमर पर मजबूत करते हुए कहा, किसी को कितना भी जरूरी काम हो, अगर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पूरी दुनिया को आग लग जाए, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। मुझे लग रहा है आपको भी कुछ कुछ हो रहा है। क्या आपके दिल में भी मेरे लिए गंदे ख्याल आते हैं, या फिर आप हमेशा ही मुझे एक बच्चे की तरह देखती हैं? ये बोलते वक्त रूहान काफी ज्यादा क्यूरियस लग रहा था, जैसे उसे सच में ना पता हो कि अनाही उसके बारे में क्या सोचती है। अनाही ने धीरे से पलकें उठाकर रूहान के चेहरे को देखा और फिर नर्वस होते हुए बोली, आपको नहीं लगता आप अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो? इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो आप मेरी बहुत इज्जत करते हो और मैं कुछ बोलती हूँ उसको फटाफट कर लेते हो, लेकिन जब मैं ऐसे आपको दूर होने के लिए कहती हूँ तो आप नहीं होते हो। ऐसा क्यों है? ये सब बोलते वक्त अनाही की आवाज पूरी तरह थरथरा रही थी। रूहान हल्का सा मुस्कराया और फिर झुककर अपने होठों को अनाही के गाल पर रखते हुए धीरे से बोला, क्योंकि मुझे पता है ना, लड़कियों को शर्माने की आदत होती है, मगर मैं भी शर्माने लग जाऊंगा तो हमारे बीच तो कभी कुछ होगा ही नहीं, और मुझे पूरी जिंदगी सिर्फ आपको देखकर नहीं बितानी है। रूहान के होठों ने जैसे ही अनाही के गाल को छुआ था, अनाही की आंखें बंद हो गई थी और उसकी पकड़ रूहान के कंधों पर और भी ज्यादा मजबूत हो गई। रूहान ने अपने होठों को धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ ले जाते हुए भारी सांसों के साथ कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ। कहते कहते वो अब अनाही की गर्दन तक पहुंच चुका था और अब अपने केले होठों को उसकी गर्दन पर घुमाते हुए उसे धीरे धीरे किस कर रहा था। अनाही अपने निचले होठ को काटते हुए अपनी सिसकारियां रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो रही थी। वो रूहान के सवालों का जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके होठों जैसे सील चुके थे। वहां से उसके होठों से सिसकारियों के सिवा कुछ नहीं निकल रहा था। उसके माथे पर बल पड़ने लगे जब रूहान उसकी गर्दन को चूमते हुए अपने दांतों से हल्का हल्का काटने लगा। उसने रूहान के बालों में अपना एक हाथ उलझाते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा, रूहान जी। रूहान उसकी आवाज सुनकर और भी ज्यादा मदहोश हो रहा था। उसने उसका जवाब देते हुए धीरे से बिना किस रोके कहा, हम्म। अनाही को महसूस हो चुका था कि वो अब रूहान की हरकतों को ऐसे तो नहीं रोक सकती, और अब उसका कंट्रोल भी लगभग खुद से छूटता ही जा रहा था। रूहान के हाथ लगातार उसकी पीठ और कमर पर चल रहे थे और वो उसके ब्लाउज की डोरी खोलने की कोशिश कर रहा था। अनाही ने भी अब उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी थी और वो भी आंखें बंद किए बस उसके होठों के टच को महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे ये सब कुछ बुरा लग रहा था, ये सब कुछ उसके लिए बहुत नया था। उसके दिल में भी अजीब सी एक्साइटमेंट थी और वो रूहान की ठंडी उंगलियों को महसूस कर बुरी तरह मचल रही थी। रूहान ने लगभग उसके ब्लाउज की डोरी खोल ही दी थी कि अचानक उनके कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से खटखटाया और अनाही ने चौंक कर अपनी आंखें खोल ली। उसने जल्दी से रूहान को कंधों से पकड़कर खुद से अलग किया और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो रूहान को क्यों नहीं रोक रही थी। ये सब कुछ बहुत एम्बैरेसिंग था। उसने अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करके धीरे से पलकें उठाकर रूहान के चेहरे की तरफ देखा, जो अब एक तड़प के साथ उसके चेहरे को देख रहा था। रूहान ने जैसे ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए, फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और अनाही ने जल्दी से कहा, प्लीज रूहान जी, ये सही वक्त नहीं है, अभी हमें नीचे जाना चाहिए। अनाही की ये बात सुनकर रूहान ने गुस्से में जबड़े कस लिए और फिर तेज कदमों से चलता हुआ दरवाजे के पास गया। उसने गुस्से में दरवाजा खोलते हुए कहा, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए जरा भी सब्र नहीं हो रहा है? सामने और कोई नहीं बल्कि निवेदिता ही खड़ी थी। वो रूहान के ऐसे गुस्से से चिल्लाने से चौंक कर दो कदम पीछे हट गई और फिर डरी हुई नजरों से रूहान के गुस्से से लाल चेहरे को देखने लगी। उन्हें नहीं पता था आखिर रूहान इतना गुस्सा क्यों है, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। वो मैं अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रूहान गुस्से में मुड़ते हुए वापस कमरे के अंदर आ गया। वहीं तब तक अनाही ने भी अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लिया था। वो भाग दौड़ते हुए दरवाजे के पास आई और फिर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी जी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। आप चलिए, मैं चलती हूँ आपके साथ, और आपने हमें कोई डिस्टर्ब नहीं किया है, हम बिजी नहीं थे। इतना बोलकर अनाही ने धीरे से रूहान की तरफ देखा, जो अब उन दोनों की तरफ पीट करके खड़ा था। वहीं निवेदिता ने घबराते हुए कहा, फिर भी मुझे सिर्फ एक बार ही बोलना चाहिए था, ऐसे बार बार आकर मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान कर दिया। निवेदिता को पता था रूहान उससे पहले से ही नाराज है और अब तो उसने उसे और भी ज्यादा नाराज कर दिया है, इसलिए उसे हर छोटी बात का डर लगता है। अनाही ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, आप खुद को दोष देना बंद करिए, चलिए बाहर हम चलते हैं। निवेदिता ने कहा, ऐसे अकेले थोड़ी जाओगी, उसे भी लेकर आओ, मैं तुम दोनों का इंतजार करती हूँ। इतना बोलकर निवेदिता खुद से ही बातें करते हुए तेज कदमों से वापस जाने लगी। उन्हें बहुत बुरा लगा था रूहान का गुस्सा देखकर, यहाँ तक कि उनकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उन्हें ऐसे जाते देखकर अनाही ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से कमरे के अंदर जाकर रूहान की बाजू पकड़ते हुए बोली, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? अच्छी बात नहीं है, आपको अपनी मम्मी जी से सॉरी बोलना पड़ेगा, पता है ना उनको कितना ज्यादा हर्ट होता है। रूहान ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मैंने जानबूझकर थोड़ी कहा था, मुझे लगा कोई सर्वेंट होगी, मुझे क्या पता वो खड़ी हैं, और मैं उनसे कोई सॉरी नहीं बोलूंगा। अगर मैंने ये जानबूझकर किया होता तो शायद मैं एक बार सोचता उन्हें सॉरी बोलने का, लेकिन अब मैं ये नहीं करूंगा। अनाही ने रोनी सूरत बनाकर कहा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो आपकी मम्मा है, आपको पता है आप कितने लकी हो कि आपकी माँ बचपन से आपको कितना सारा प्यार करती है, और किसी किसी की मम्मा तो इतनी बुरी होती है ना कि उन्हें पैदा होते ही बहुत समझती हैं और उन्हें छोड़कर चली जाती हैं। आपकी मम्मा तो आपका इतने सालों का गुस्सा भी झेल रही हैं, उन्होंने मुड़कर आपसे कुछ नहीं कहा है, आपने कितना भी हर्ट कर लो वो हमेशा दांतों तले जुबान दबाकर आपसे सॉरी सॉरी बोलती रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बहुत तड़प रही हैं आपके प्यार के लिए। अनाही की बातों से रूहान को अंदाजा हो गया था कि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी जो एक नवजात शिशु को अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई थी। रूहान ने जल्दी से अनाही का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, मैडम जी आपको रोने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना बोल रही हैं तो मैं मॉम से सॉरी बोल दूंगा, आप प्लीज रोए मत। इतना बोलकर उसने जल्दी से अनाही को अपने सीने से लगा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सहराने लगा। वहीं उसके ऐसा करने पर अनाही के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। उसे पता था कि उसका पति अच्छा है, लेकिन उसके लिए वो अपना ईगो भी छोड़ देगा, इसका अंदाजा उसे नहीं था। थोड़ी देर बाद रूहान ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, ठीक है अब हम नीचे चलते हैं वरना फिर से कोई आ जाएगा, और वैसे भी आप जितना मेरे करीब रहती हैं उतना मेरा मन भटक जाता है।
फिर से रूहान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनाही का दिल उसके सीने में जोरों से धड़कने लगा था। वो जल्दी से उसे अलग होते हुए बोली, नहीं हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं, चलिए चलते हैं। उसकी इस बात पर रूहान के होठों पर स्माइल आ गई और वो दोनों एक साथ नीचे जाने लगे।